ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संघीय संसद के दोनों सदनों में आगामी आर्थिक वर्ष के लिए विनियोजन विधेयक के सिद्धांत और प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई प्रारंभ। समस्याग्रस्त सहकारियों के बचतकर्ताओं की जमा राशि लौटाना हुआ शुरू। आज तीन सहकारी के 378 छोटे बचतकर्ताओं की लौटाई गई जमा राशि। राष्ट्रीय आर्थिक गणना 2082 की अब तक 87% गणना हुई संपन्न। और नाइजीरिया सेना और अमेरिकी सेना के संयुक्त अभियान में 20 से अधिक आतंकवादियों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा में आगामी आर्थिक वर्ष के विनियोजन विधेयक के सिद्धांत और प्राथमिकताओं पर आज से विस्तृत चर्चा शुरू हुई। अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम वागले द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए सांसदों ने युवाओं के लिए रोजगार सृजन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार, पूर्वाधार विकास, डिजिटल रूपांतरण तथा सामाजिक न्याय को बजट की मुख्य प्राथमिकता बनाने पर जोर दिया। सांसदों ने कहा कि देश में बेरोजगारी और युवा पलायन लगातार बढ़ रहा है, जबकि किसानों को समय पर खाद और बीज नहीं मिल पा रहा है। सांसदों ने स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और निजी क्षेत्र में विश्वास बहाली की आवश्यकता भी बताई। विभिन्न दलों के सांसदों ने संविधान के समाजवादोन्मुख आर्थिक नीति को व्यवहार में लागू करने, कृषि के व्यवसायीकरण, उद्योगों को प्रोत्साहन तथा संघ प्रदेश और स्थानीय तह के बीच समन्वय मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। सांसदों ने यह भी कहा कि बजट को आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान की दिशा में केन्द्रित होना चाहिए। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल सुबह 11 बजे होगी। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने प्रतिनिधि सभा नियमावली मसौदा समिति की रिपोर्ट 2083 को बहुमत से पारित किया। समिति के सभापति गणेश पराजुली ने कहा कि नई नियमावली को संसद को अधिक जवाबदेह, व्यवस्थित, पारदर्शी और प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि नियमावली संसदीय अभ्यास, राजनीतिक परिवर्तन और संविधान द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुभवों के आधार पर तैयार की गई है। बैठक में सांसदों ने सरकार को संसद के प्रति जवाबदेह बनाने, विपक्ष की प्रभावकारी भूमिका सुनिश्चित करने और संसद की गरिमा बनाए रखने पर जोर दिया। सांसदों ने नियमावली के कुछ प्रावधानों पर असहमति भी जताई और कहा कि कोई भी नियम संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। सांसदों ने संसद में अनुशासन, अमर्यादित भाषा और सांसदों के अधिकार तथा कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर भी चर्चा की। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसदों ने कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल की भूमिका पर प्रश्न उठाया है। प्रतिनिधि सभा की बैठक में सांसदों ने संवैधानिक परिषद द्वारा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिश के खिलाफ दायर निवेदन को पंजीकृत कर सुनवाई का आदेश दिए जाने का विषय पर आपत्ति जताई। इस मुद्दे पर संसद में बहस शुरू होने के बाद एमाले सांसदों ने विरोध दर्ज कराया। एमाले के प्रमुख सचेतक एन बहादुर मेहर ने अदालत में विचाराधीन मामले को संसद में उठाए जाने को न्यायपालिका का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों द्वारा अपने संवैधानिक दायित्व के तहत किए गए कार्यों पर संसद में इस प्रकार की टिप्पणी उचित नहीं है। प्रतिनिधि सभा की बैठक में सांसदों ने बलात्कार, हत्या, मानव तस्करी, वैदेशिक रोजगार में नेपाली श्रमिकों की सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवाओं की बदहाली जैसे मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। सांसदों ने कुवैत पहुंचने के बाद लापता नेपाली महिला शर्मिला दर्जी की खोज और खाड़ी देशों तक फैले मानव तस्करी नेटवर्क पर रोक लगाने की मांग की। सांसदों ने भूमिगत विद्युत तथा पेयजल आपूर्ति लाइन विस्तार परियोजनाओं में लापरवाही, सड़क खुदाई के बाद समय पर मरम्मत न होने और बढ़ती दुर्घटनाओं पर चिंता भी जताई। सांसदों ने सार्वजनिक यातायात में यात्रियों के साथ हो रही अव्यवस्था और भीड़भाड़ पर भी सरकार का ध्यान खींचा। बैठक में बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई, पीड़ितों को न्याय और उपचार उपलब्ध कराने तथा गांव गांव तक जनचेतना अभियान चलाने की मांग उठी। सांसदों ने विदेश रोजगार के नाम पर ठगी रोकने और फ्री वीजा फ्री टिकट नीति को प्रभावकारी ढंग से लागू करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो, हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 के विनियोजन विधेयक के सिद्धांत और प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। सांसदों ने कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजित कर युवाओं को स्वदेश में रोकने, निजी क्षेत्र को साझेदार के रूप में प्रोत्साहित करने और उत्पादनमुखी अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। सांसदों ने कहा कि सार्वजनिक संस्थाओं को पारदर्शी बनाना और स्थानीय अर्थतंत्र को मजबूत करना आवश्यक है। कुछ सांसदों ने सरकार पर वास्तविक आर्थिक स्थिति और आंकड़ों के बिना बजट सिद्धांत प्रस्तुत करने का आरोप भी लगाया। बैठक में सहकारी क्षेत्र के लोकतांत्रिकीकरण, विस्थापित महिलाओं, बच्चों और वृद्धों को बजट में प्राथमिकता देने तथा स्थानीय स्तर तक विकास कार्यक्रम पहुंचाने की मांग भी उठी। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल ने मंत्रिपरिषद में किए गए फेरबदल से संबंधित राष्ट्रपति कार्यालय का पत्र पढ़कर सुनाया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक कल दोपहर 1:15 पर होगी। सरकार ने संकटग्रस्त सहकारी संस्थाओं के छोटे बचतकर्ताओं की जमा राशि लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संकटग्रस्त सहकारी प्रबंधन समिति ने आज 3 सहकारी संस्थाओं के 378 छोटे बचतकर्ताओं को उनकी बचत राशि वापस की। समिति के अनुसार कांतिपुर सहकारी के 215, शिवशिखर बहुउद्देश्य सहकारी के 156 और पशुपति सहकारी के 7 छोटे बचतकर्ताओं को राशि लौटाई गई। पहले दिन कम राशि जमा करने वाले बचतकर्ताओं को भुगतान किया गया है। भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री प्रतिभा रावल के सचिवालय ने बताया कि आगे बचत राशि के आधार पर वर्गीकरण कर सभी बचतकर्ताओं को चरणबद्ध रूप से रकम लौटाई जाएगी। समिति के अनुसार संकटग्रस्त सहकारी संस्थाओं के लगभग 76,000 बचतकर्ताओं की करीब 46 अरब रूपये की राशि वापस करनी है। सचिवालय ने बताया कि इनमें अधिकांश छोटे बचतकर्ता हैं। 5 लाख से रूपये से कम जमा करने वालों को छोटे बचतकर्ता और 5 लाख रूपये से अधिक जमा करने वालों को बड़े बचतकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कुल 76,000 बचतकर्ताओं में से 18,000 ने 5 लाख रूपये से अधिक की बचत जमा की है। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री प्रतिभा रावल ने कहा कि बचत राशि लौटाने के लिए सहकारी संस्थाओं से ऋण वसूली का काम तेजी से किया जा रहा है। उनके अनुसार संकटग्रस्त सहकारी संस्थाओं के ऋणियों के नाम सार्वजनिक होने के बाद अब ऋणी ऋण चुकाने के लिए आगे आने लगे हैं। संकटग्रस्त सहकारी प्रबंधन समिति के अनुसार अब तक संकटग्रस्त सहकारी संस्थाओं के ऋणियों से 2 करोड़ रूपये से अधिक की राशि वसूल की जा चुकी है। समिति ने कहा कि ऋण वसूली और बचत वापसी की प्रक्रिया साथ साथ आगे बढ़ेगी। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के गुंडू स्थित निवास पर आज संपन्न पार्टी सचिवालय बैठक ने पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी को पार्टी की सदस्यता देने का निर्णय किया। पार्टी के उपमहासचिव लेखराज भट्ट ने जानकारी दी कि आज हुई सचिवालय बैठक में भंडारी को पार्टी सदस्यता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। बैठक में सरकार के कामकाज की समीक्षा, पार्टी सदस्यता नवीकरण और विस्तार तथा पदाधिकारियों एवं सदस्यों के कार्य विभाजन के विषय पर भी चर्चा हुई। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली द्वारा संबोधित सचिवालय बैठक में पदाधिकारियों की वरिष्ठता क्रम, संविधान संशोधन के मुद्दे तथा पार्टी कार्यालय भवन निर्माण सहित विभिन्न प्रस्ताव पेश किए गए। नेता लेखराज भट्ट ने बताया कि बैठक में कुल 11 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। उन्होंने कहा कि सचिवालय की अगली बैठक आगामी 8 जेठ शुक्रवार को आयोजित की जाएगी। भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मंत्री सुनील लम्साल ने कहा कि आने वाले दशहरे तक सभी सुकुमवासियों को भूमि स्वामित्व का प्रमाण पत्र मिल जाएगा, इसलिए आंदोलन की जरूरत नहीं है। अपने चुनाव क्षेत्र रूपंदेही क्षेत्र नंबर 1 के मतदाताओं के साथ बातचीत के दौरान मंत्री लम्साल ने कहा कि सरकार सुकुमवासी समस्या का स्थायी समाधान करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। राष्ट्रीय तथ्यांक कार्यालय द्वारा संचालित दूसरे राष्ट्रीय आर्थिक गणना 2082 का अब तक 87.08% कार्य पूरा हो चुका है। कार्यालय के प्रवक्ता ढूंडीराज लामिछाने ने बताया कि वैशाख 2 गते से शुरू हुई गणना आगामी आषाढ़ 7 तक जारी रहेगी। अब तक 8 लाख से अधिक कागजी फार्म और 10,000 से अधिक ई सेंसस टोकन वितरित किए जा चुके हैं। प्रमुख तथ्यांक अधिकारी डॉ कमल प्रसाद पोखरेल ने कहा कि आर्थिक गणना से व्यवसाय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यांक प्राप्त होंगे जो सरकार की नीति और योजना निर्माण में उपयोगी साबित होंगे। इस अवसर पर रेडियो कर्मियों ने सरकारी विज्ञापन कटौती न करने और रेडियो क्षेत्र को कर में राहत देने की मांग की। नेपाली रेडियो नेटवर्क के प्रबंध निर्देशक अमृत अधिकारी ने कहा कि रेडियो आज भी सबसे प्रभावकारी जनमाध्यम है और इसके संरक्षण के लिए सरकार को लचीली नीति अपनानी चाहिए। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। नाइजीरिया सेना ने कहा है कि पूर्वोत्तर बोर्नो राज्य में अमेरिका की सेना के साथ संयुक्त अभियान में इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े 20 से अधिक आतंकवादी मारे गए। मितेले में चलाए गए इस अभियान के कुछ ही दिन बाद इस्लामिक स्टेट पश्चिम अफ्रीका प्रांत के उपनेता अबू बकर अल मैनुकी की हत्या हुई जो नाइजीरिया और अमरीका के बीच गहरे सैन्य सहयोग का संकेत है। नाइजीरिया सेना के प्रवक्ता समाइला उबा ने कहा कि आतंकवादी नेटवर्क को नष्ट करने, आतंकवादियों को युद्ध क्षेत्र से खदेड़ने और विद्रोहियों को नाइजीरिया के भीतर सुरक्षित ठिकाने खोजने से रोकने के लिए अमेरिकी सेना के साथ समन्वित प्रयास जारी है। अमेरिकी सेना ने पुष्टि की कि नाइजर और चाड की सीमाओं के पास किए गए हमलों के दौरान कोई भी अमेरिका या नाइजीरियाई कर्मी घायल नहीं हुआ। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संघीय संसद के दोनों सदनों में आगामी आर्थिक वर्ष के लिए विनियोजन विधेयक के सिद्धांत और प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई प्रारंभ। समस्याग्रस्त सहकारियों के बचतकर्ताओं की जमा राशि लौटाना हुआ शुरू। आज तीन सहकारी के 378 छोटे बचतकर्ताओं की लौटाई गई जमा राशि। राष्ट्रीय आर्थिक गणना 2082 की अब तक 87% गणना हुई संपन्न। और नाइजीरिया सेना और अमेरिकी सेना के संयुक्त अभियान में 20 से अधिक आतंकवादियों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।